अन्वय विश्वास से बात करने के बाद वापस अंदर आया। गेट के पास आन्या खड़ी थी, उसे गुस्से से घूर रही थी। अन्वय उसे नज़रअंदाज करके जाने लगा। आन्या ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। कोई नहीं लगती ना मैं तुम्हारी, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। पर मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यहीं रहूँगी, जो होगा मैं देख लूँगी, पर यहाँ से कहीं जाऊँगी नहीं, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अन्वय ने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम में घुस गया। आन्या गुस्से में बालकनी में जाकर बैठ गई। दोनों के बीच इसके बाद कोई बात नहीं हुई। रात को आन्या गुस्से में भूखी ही सो गई। अन्वय शायद इसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे सोता देख वो उठकर बालकनी में चला गया। वहाँ वही साया जो हमेशा उसके आसपास रहता था, जाने कितनी देर से उसका ही इंतज़ार कर रहा था। अन्वय के भाव अब एकदम सख्त थे। उसने सख्त निगाहों से उस पर टिकाते हुए कहा, क्या हुआ है? मल्लिका ने आपको वापस बुलाया है। काउंसिल से आपको कल वहाँ पेश होने का आदेश आया है। मास्टर, आज आपने जिन्हें मारा वे विक्रांत के साथ ही थे। अब उसने काउंसिल में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है, तो कल आपको वहाँ पहुँचना होगा और अभी मल्लिका के सामने हाजिर होना होगा। उस साये ने सर झुकाकर सब उसे बता दिया। अन्वय ने उसे दो मिनट रुकने को कहा और अंदर जाकर पेपर पर कुछ लिखकर उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। आन्या के माथे पर अपने प्रेम चिन्ह को अंकित करते हुए बोला, वक्त आ गया है अब मेरे जाने का। कल विश्वास आ जाएगा तुम्हें लेने, बस तुम उसके साथ बिना कोई नाटक किए चली जाना। इतना कहकर वो वापस बालकनी में आया और उस साई को देखकर बोला, जब तक विश्वास यहाँ नहीं आ जाता, इस घर और इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस साई ने सर झुकाकर उसके हुक्म को मान लिया। अन्वय एक बार फिर हवा के तेज झोंके की तरह वहां से उड़ गया। कुछ देर बाद वो मुंबई के आउटर एरिए के घने जंगलों के बीच बने एक विशाल और भव्य महल के सामने खड़ा था। आसपास ऊंचे घने पेड़ थे जो उस महल को घेरे हुए थे, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहे हों। सूरज की किरणें कम ही पड़ रही थीं तो हल्का अंधेरा था वहाँ, और उस अंधेरे में वो महल चांद की तरह जगमगा रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो महल, पर थोड़ा डरावना भी लग रहा था। अन्वय कुछ पल महल के द्वार पर खड़ा रहा, तभी एक वैम्पायर उसके सामने उपस्थित हो गया और सर झुकाकर उसे ग्रीट करने के बाद बोला, मास्टर, मल्लिका अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अन्वय ने उसकी बात सुनकर हामी भरी और अंदर जाने लगा। कुछ ही देर में वो एक विशाल कक्ष के सामने खड़ा था। उसने गहरी सांस छोड़ी और अंदर कदम रखते हुए बोला, आपने मुझे बुलाया। बैठिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनामिका जी, जो वहाँ लगे बड़े से सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने अन्वय को बैठने का इशारा किया। अन्वय उनके सामने बैठ गया और उनके कुछ कहते का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद अनामिका जी ने गंभीरता से कहा, अन्वय, आप जानते हैं आपने आज क्या किया है और उसका परिणाम क्या हो सकता है? हम आपको अभी इन सब से दूर रखना चाहते थे। अभी तक आपने ढंग से अपनी शक्तियों को समझा तक नहीं है, कभी अपने कुनबे के साथ रहे ही नहीं। आप अभी कुछ भी नहीं जानते हैं और आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। आपको पता है विक्रांत को इसी पल का इंतज़ार था, जब आप सबके सामने आए और वो आपको नुकसान पहुंचा सके। आप उनके रास्ते का कांटा है और आपने खुद उन्हें मौका दे दिया है आप पर वार करने का। हम जानना चाहते हैं कि आप तो इन सबसे दूर रहना चाहते थे ना, फिर आज ये क्या हो गया जो आपने उनके साथियों को मारा? उन्होंने गलती की थी और मैंने उन्हें उनकी गलती की सज़ा दी है, जिसका मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। और आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। मैंने जो किया है बहुत सोच समझ कर किया है। कोई ये साबित नहीं कर पाएगा कि उनके साथियों को मैंने ही मारा है। और वैसे भी मुझे कभी ना कभी तो सबके सामने आना ही था। कब तक आप मुझे सबसे छिपा कर रख लेती? अब मैं यहाँ आया ही हूँ तो जो भी गलत हो रहा है वो सब सही करूँगा, वो भी अपने तरीके से। आप चिंता मत कीजिए, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको इंतज़ार है कि आखिर अन्वय है कौन, तो उनकी जिज्ञासा को अब मैं समाप्त करने वाला हूँ। बहुत हो गया छुप छुप कर जीना, अब जो होगा आमने सामने होगा। बहुत भाग लिया मैं अपने फ़र्ज से, अब मुझे अपने पापा को उनकी कैद से आज़ाद करवाना है। उसके लिए उनसे टकराना तो है ही, तो मिलना तो पड़ेगा ही। आप निश्चिंत रहें, अब कुछ गलत नहीं होगा। मैं सब ठीक करने आया हूँ और सब ठीक करने के बाद ही शांत बैठूंगा। अन्वय ने शांति से अपनी बात कही और उठने लगा। अनामिका जी ने दोबारा कहा, जीवन बता रहे थे कि आप एक लड़की के बचाने के लिए वहाँ पहुँचे थे और उन्हीं के लिए आपने उन सबको मारा। क्या हम जान सकते हैं कि वो लड़की कौन है? उनका सवाल सुनकर अन्वय के कदम रुक गए। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए मन ही मन कहा, जैक के पेट में भी कोई बात नहीं बचती। मना किया था मैंने उसे कि आन्या के बारे में माँ को कुछ न बताए, पर नहीं, उसने उनके सामने सब उगल दिया। अन्वय ने अब गहरी सांस छोड़ी और वापस गेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, कोई खास नहीं थी, आम लड़की थी। गलती से उनके सामने आ गई तो वो उसे मारने वाले थे और मैं किसी निर्दोष को उनका शिकार बनते कैसे देख सकता था। बस इसलिए लड़ाई हो गई और ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर वो उनके कक्ष से बाहर निकल गया और दो चार कमरे छोड़कर बने कमरे में चला गया। ये उसका कमरा था जहाँ वो बस एक बार ही आया था, पर अनामिका जी ने उसके कमरे को अच्छे से साफ सुथरा करवाया हुआ था। उसकी आदत के हिसाब से सब चीज़ें व्यवस्थित थीं और रूम सिंपल होने के बावजूद बहुत खूबसूरत लग रहा था। अनवई जाकर बेड पर लेट गया। उसने अपने सर के पीछे बाहर रखी और ऊपर लटके झूमर को देखते हुए आन्या के बारे में सोचने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई।